ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हरे कृष्णा। तो जैसे आज आप लोग जानते हैं, आज जो है आज का दिन अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो अक्षय का अर्थ होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अक्षय, एक भक्त का नाम है अक्षय गौरांग। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। एक बीमारी होती है, आप लोगों को मालूम है, क्षय रोग कहते हैं। क्षय यानी जो जिसको ऐसी एक बीमारी होती है जिससे शरीर गल जाता है, तो उसको टीबी भी कहते हैं। तो लेकिन अक्षय का अर्थ होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता है। लेकिन भौतिक जगत में हमें मालूम होना चाहिए सब कुछ नाश होता है। तो शास्त्र में आज के दिन हम देखते हैं कि लोग जो है, लोगों को मालूम है कि कोई मुहूर्त की जरूरी नहीं, 24 घंटे में जब चाहिए कुछ भी हम कर सकते हैं, खास करके अच्छे कार्य। तो शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख आते हैं कि अक्षय तृतीया का। अक्षय का अर्थ होता है कि जिसका नाश नहीं होता है, और ये वैशाख के आज तीसरे दिन इसकी तिथि होने के कारण इसको तृतीया कहा जाता है। तो इस पुराण में उल्लेख आता है कि शास्त्र में साढ़े तीन दिनों का उल्लेख आता है। साढ़े तीन दिन का अर्थ होता है एक दिन, आधा दिन। तो ये चार दिन बताए जाते हैं शास्त्रों में, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अब देखेंगे, जैसे जनवरी को माघ कहा जाता है। अब देखते हैं कि काफी लोग कुंभ मेला वगैरह जाते हैं। तो माघ के बाद में अभी ये वैशाख मास में भी जो भी हम तपस्या करते हैं इसका भी काफी लाभ मिलता है। और इसके बाद में कार्तिक, तो कार्तिक महीने को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख आता है कि साल में साढ़े तीन दिन है जिनको कहा जाता है कि इसको बताया जाता है कि एक व्यक्ति को जो भी आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसका पूरा उसको लाभ मिलता है। तो ये तीन दिन है जो आज का कहा जाता है समवस्त्र आरंभ। तो अक्षय तृतीया आज का दिन है। फिर दूसरा जो है उसको कहते हैं गुड़ी पाड़वा। ये महाराष्ट्र साउथ इंडिया में लोग क्या करते हैं कि उस दिन भी जो है खेती, खास करके किसान अपने बैलों को लेकर जाके खेती में खेत को हल से ये करते हैं। फिर तीसरा दिन है दशहरा, ये आता है दिवाली से पहले। दशहरा राम विजय उत्सव है। राम उस दिन जो है राम भगवान ने रावण का वध किया था। और चौथा जो है आधा दिन है बलि प्रतिपद। तो ये बलि प्रतिपद और एक इसका आधा ही दिन का ये माना जाता है। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि ये जो है आज का दिन है शुक्ल पक्ष वैशाख का। तो आज जो तीसरा दिन है, तो इस दिन जो भी व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक जो भी कार्य करते हैं तो इसका कोई नाश नहीं होता है, और एक व्यक्ति को इसका अनगिनत जो है फल मिलता है। तो महाभारत में कृष्ण भगवान जो है वो युधिष्ठिर महाराज को उल्लेख करते हैं। तो उसमें वो बताते हैं अस्यम तीर्थो क्षयपि हुतम न दत्तम तेन अक्षयति क्षिण मुनि श्रुतय उद्दिश्य द्वैपय तृक्यन्ते मुनः तत्ते अक्षरम भवति भारत। तो कृष्ण भगवान यहां युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि देखो, आज के दिन जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दान, अलग अलग प्रकार का दान बताया जाता है, सोना चांदी कपड़ा ये चीनी नमक बहुत प्रकार बताए जाते हैं शास्त्र में दान में। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि आज किसी भी प्रकार का दान और यज्ञ किया जाता है तो इसका एक व्यक्ति को पूरा जो है फल मिलता है। तो इसके लिए कृष्ण भगवान यानी उनको बता रहे कि जितने भी हमारे जो पूर्व आचार्य लोग इनको कहते हैं अक्षय तृतीया, इस दिन को जो व्यक्ति आज के दिन भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान या देवताओं को, तो ऐसे व्यक्ति जो है इसके द्वारा अपने पूर्वजों को उनको भी तृप्त कर देता है, और ऐसे व्यक्ति को आगे ऊंचे लोगों की जो है प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि अक्षय तृतीया का इसमें महाभारत में उल्लेख आता है कि आज के दिन लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा जाप करना चाहिए, फिर तप भी करना चाहिए, फिर जितना हो सके दान करना चाहिए, फिर पवित्र नदियों में जाके स्नान करना चाहिए, इसके बाद में हवन करना चाहिए, उसके बाद में होम हवन जब भी घर में यज्ञ करते हैं उसको हवन कहते हैं, होम का अर्थ होता है कि और जो दूसरे कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में तर्पण, जो हमारे जो पूर्वज लोग हैं तो उनके प्रति भी हमारा एक ऋण होता है, तो बताया जाता है कि उनको उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है, तर्पण करना चाहिए। और एक व्यक्ति आज के दिन अगर दीक्षा भी ले लेता है तो उसको भी उसका काफी लाभ मिलता है। फिर उपनयन संस्कार भी कर सकते हैं, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि उपनयन संस्कार, विवाह अगर अपने किसी को बच्चों को किसी को शादी करनी है वो भी कर सकते हैं। और एक व्यक्ति अगर उपवास या व्रत करना चाहे वो भी कर सकता है। तो अगर किसी को घर बांधना है, घर प्रवेश करना है, तो ऐसे बहुत सारे कार्य बताए। तो आज के दिन भारत में हम देखते हैं कि सब जगह काफी लोग अक्षय तृतीया मनाते हैं, काफी पैसा खर्चा करते हैं। तो शास्त्रों में कुछ प्रमुख चीजें बताई गई आज के दिन बहुत सारे घटनाएं हुई है, तो इनके बारे में आपको संक्षिप्त में बताएंगे। तो आज के दिन से जो है चंदन यात्रा, अभी जैसे गोपाल जी जो है वृंदावन में हम देखते हैं कि माधवेंद्र ब्रज अभी आए थे, तो भगवान जो है कृष्ण उनके द्वारा उन्होंने अपने आप को प्रकट करवाया था गोपाल जी ने, और गोपाल जी ने उनको कहा था कि आप जो है मुझे जाके जगन्नाथपुरी से चंदन ले आओ। तो आज के दिन से 21 दिन जो है सब मंदिरों में खास करके कृष्ण भगवान को ये चंदन का लेप लगाया जाता है 21 दिनों के लिए। फिर आज के दिन जो है जगन्नाथपुरी में भी जो है बताया जाता है, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि राजा इंद्रदुम्न है, उनको स्वयं जगन्नाथ भगवान ने आदेश दिया था कि आप क्या करो, मेरा चंदन, मुझे चंदन लगाओ। और आज के दिन जो है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के जो ये होते हैं उत्सव विग्रह, उनका नाम है ये मदन मोहन, तो इनको जो है नरेंद्र सरोवर में लेके जाते हैं। तो जगन्नाथ भगवान जो है उन्होंने राजा जो है उनको उल्लेख किया था कि आप जो है मुझे चंदन लगाना। फिर आज जो है जैसे परशुराम और हाईग्रीव नारायण, इनकी भी तिथि है, इनका ये जन्म तिथि बताया जाता है। और आज ही के दिन जो है गंगा जी का जो है ये स्वर्ग लोक से जो भूलोक, यहां गंगा जी पधारी थी, तो जैसे आप लोग जानते हैं भागीरथ मुनि है वो गंगा जी को ले आए थे इस भौतिक जगत पर। फिर आज के दिन जैसे चार धाम है, तो ऐसे चार धाम जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां भी आज से दर्शन आरंभ होगा। तो इस प्रकार वहां जो है आज से काफी लोग वहां दर्शन के लिए चले जाते हैं। फिर आगे आज के दिन जो है जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा आएगा, तो इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा है जुलाई 10 तारीख को, तो आज से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का कार्य शुभारंभ वो आरंभ हो जाएगा। और आज ही के दिन जो है द्वारका में सुदामा जो है कृष्ण भगवान को मिले थे, तो शास्त्र में उल्लेख आता है कि सुदामा की जो पत्नी थी उन्होंने सुदामा को जबरदस्ती भेज दिया था, उनके साथ उन्होंने कुछ फोआ भेज दिया था कृष्ण भगवान को, तो लेकिन जब सुदामा जी गए थे तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कुछ नहीं मांगा। तो आज के दिन बताया था कि सुदामा और कृष्ण का जो है द्वारका में मिलन हुआ था। और आज के दिन जो है व्यासदेव जी ने जो है महाभारत का लिखने का शुभारंभ किया था, तो उन्होंने गणेश जी को कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, आप लिखते जाना। तो गणेश जी ने कहा था देखो मैं तो फास्ट लिखता हूं, आपको जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। तो व्यासदेव जी ने कहा ठीक है मैं बोलूंगा, लेकिन आपको समझ कर लिखना है, मैं जो भी बोलूंगा उसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूं, जब आपको समझ में आएगा तब लिख देना। इस प्रकार जो है आज के दिन जो है महाभारत का जो है लिखना व्यासदेव जी ने और गणेश जी ने आरंभ किया था। और आज ही के दिन जो है सूर्य भगवान, हाँ, उन्होंने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि द्रौपदी जो है पांडव जब 14 साल वनवास में थे, वो लोग कोई भोजन पकाते नहीं थे, तो सूर्य भगवान ने जो द्रौपदी को एक ऐसी थाली दी थी कि जब तक द्रौपदी उसमें से कुछ नहीं खाती तो उसमें जो चाहिए सब कुछ प्राप्त हो सकता था, जैसे कल्पवृक्ष जो भी चाहिए देता है, तो ये अक्षय पात्र से जो चाहिए सब कुछ मिलता था। तो आप लोगों को मालूम होगा कि दुर्योधन ने जो है दुर्वास मुनि को भी भेजा था, लेकिन खाना खाने के बाद, द्रौपदी के खाने के बाद भेजा था, लेकिन ये जो है द्रौपदी को सूर्य भगवान ने ये थाली दी थी। और आज के दिन बताया जाता है कि पूरे सृष्टि में सूरज और चंद्रमा का जो प्रकाश है उसमें काफी तेजी होती है और सूर्य के प्रकाश से जो आम है उसमें वो परिपक्व हो जाता है और चंद्रमा के प्रकाश से उसके अंदर रस आ जाता है। आज के दिन से आम जो है वो ठाकुर जी को अर्पण करके खा सकते हैं। तो आज के दिन वृंदावन में बांके बिहारी का चरण दर्शन और काफी मंदिरों में राधा रानी का भी चरण दर्शन होता है, तो आप लोग शाम को जाके कर सकते हैं। तो आज के दिन ऋषभदेव जैन लोग हैं वो लोग ऋषभदेव को मानते हैं, तो आज जो है ऋषभदेव का भी जन्म तिथि है। फिर आज के दिन बताया जाता है कि जो कुबेर है जो देवताओं के जो है धन यानी फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करते हैं आज के दिन जो है लक्ष्मीनारायण की वो पूजा करते हैं उनसे धन प्राप्त करने के लिए, तो इसको कहा जाता है लक्ष्मी तर्पण। तो शास्त्र में उल्लेख आता है कि कुबेर जो है लक्ष्मीनारायण की उनकी पूजा करते हैं। और आज ही के दिन जो है ब्रह्मा जी ने सत्ययुग का आरंभ किया था, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो आज के दिन ब्रह्मा जी ने सत्ययुग का आरंभ किया था आज के दिन से। फिर आगे उल्लेख आता है कि जो है त्रेता युग का पहला दिन भी आज ही से आरंभ हुआ था, त्रेता युग का भी। और शास्त्रों में उल्लेख आता है जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन को उसको कहा जाता है कल्प, तो ऐसे उल्लेख आता है कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग के पश्चात जो सत्ययुग आता है तो कलयुग को कहा जाता है कलह काल। कलह काल का अर्थ होता है कि जिसमें लोग कलह यानी झगड़ा ही करते रहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी यहां थे न्यूयॉर्क में, तो एक गाड़ी जा रही थी घंटी बजाते टन टन, तो रात का समय था जोर से सायरन बज रहा था, तो प्रभुपाद जी ने पूछा अरे क्या हो गया, तो उन्होंने किसने बताया कि प्रभुपाद जी कहीं आग लग गई, तो उन्होंने कहा ये कलयुग है सब जगह आग तो लगी रहती है, संसार दावा नललीड़ लोक, जैसे हम लोग सुबह गाते हैं। तो कलयुग में हम देखते हैं कि सब जगह लोग कलह झगड़े में लगे रहते हैं, आप कहीं भी जाओ परिवार में फिर देश देश में सब जगह झगड़ा ही चलता रहता है। तो बताया जाता है कि आज के दिन कलह काल का समाप्त होके जो है इसका सत्ययुग का जो शुभारंभ, सत्ययुग को बताया जाता है कि जो है दिव्य युग उसका आरंभ हो जाता है। और आज के दिन बताया जाता है कि भूमि का पूजन करना चाहिए, भूमि देवी को जो है मृतिका देवी कहा जाता है। तो आज के दिन जो है जितने भी किसान लोग वो क्या करते हैं कि आज मृग नक्षत्र जो है वो आएगा, तो आज के दिन भूमि में क्या करते हैं लोग किसान लोग वो अनाज को डालते हैं, फिर आज इससे जो है ये वर्षा का आरंभ होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कल वर्षा हुई थी, तो ये जो है वर्षा ऋतु जो है मानसून इसका आरंभ होता है। तो आज के दिन लोग क्या करते हैं जो धान्य लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है आठ प्रकार की लक्ष्मी है, तो एक है धान्य लक्ष्मी यानी जिनसे हमें धान्य मिलता है, और धन लक्ष्मी धन यानी आज के दिन लोग सोना खरीदते हैं, सोने का भाव आप लोग जानते हैं आजकल। और आज के दिन जो वैभव जो है हमारा जो है वैभव बढ़ाना है, तो ये तीन लक्ष्मियों का भी जो है वो पूजा किया जाता है। तो जैसे आज के दिन मैंने बताया कि किसान लोग क्या करते हैं कि खेती में अनाज डालते हैं और जितने भी जड़ी बूटी है, ऐसे बताया जाता है कि जितने भी वैद्य लोग होते हैं वो जड़ी बूटियों को भी लोग लगा देते। तो आज के दिन अगर जड़ी बूटियों को जमीन में ये करते हैं उगाते हैं तो जड़ी बूटियों का जो है औषधि उसका गुण है वो बढ़ता है। और आज के दिन जो है तिल का भी तर्पण करते हैं, ऐसे बताया जाता है कि हम भगवान को जो है आज के दिन तिल के अलग अलग व्यंजन बना के तिल का तर्पण कर सकते हैं, तर्पण यानी एक प्रकार से भगवान को उसका तर्पण करना। तो बताया जाता है कि तिल जो है सात्विक, बताया जाता है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको जो है निकाल देता है और हमारे अंदर सात्विक, ऐसे बताते हैं कि घी के बाद में तिल का जो तेल है उसको भी घी के समान माना जाता है। तो तिल का आज जो है वो तर्पण किया जाता है जिससे हमारे अंदर जो ये शक्ति है यानी जो दिव्य शक्ति है वो जो है जागृत हो जाती है। फिर आगे बताया जाता है कि आज के दिन जो भी हम भगवान को कोई भी प्रकार का कुछ भी सेवा प्रदान करते हैं तो बताया जाता है कि आज के दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान को चंदन लगाने का, तो आप लोग अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आज के दिन भगवान को जो भी हम अर्पण करते हैं तो भगवान प्रेम से उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आगे बताया जाता है कि जैसे आपको बताया कि आज के दिन खास करके जब तब दान स्नान हवन होम ये जो भी अन्य कार्य करते हैं हम लोग दान कार्य, तो इसका एक व्यक्ति को पूरा फल मिल जाता है। आज के दिन बिना भेदभाव के हम दान दे सकते हैं, तो अन्य दिनों में हमें देश काल पात्र के अनुसार दान देना पड़ता है। आज के दिन जो है आपको यानी देश काल पात्र देखने की कोई जरूरत नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को वो दान भी देंगे तो उसका आपको रिएक्शन नहीं होगा। फिर आगे आज के दिन जिसका भी जन्म होता है वो व्यक्ति काफी भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि आज के दिन जो है आसमान में बहुत सारे ऐसे नक्षत्र है उनका दिव्य प्रकाश होता है। तो हमारा जब भी जन्म होता है तो हमारी एक कुंडली बनाते हैं, तो बताया था कि आज के दिन जिसका भी जन्म होता है तो आज के दिन जितने भी नक्षत्र होते हैं आसमान में तो उनका भी हमें जो है ये उनकी भी शक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बताया था कि आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। लेकिन अभी कलयुग है, लोग अपने मन से कुछ भी करते हैं। पिछले साल क्या हो गया कि दिसंबर में लोग देखो आजकल क्या क्या तर्क लगाते हैं कि वो कहते हैं कि हम अपना बच्चा 12 12 12 12 12 को मैंने पैदा करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में 12 तारीख को दोपहर को 12 बजे 12 सेकंड में फिर 12वां महीना 2012। देखो लोगों का कितना तर्क है। तो हम भगवान के साथ या सृष्टि के साथ खेल रहे, तो ये एक प्रकार से एक पाप कार्य है। तो लेकिन आज के दिन जो है जो भी एक का स्वाभाविक जिसका एक जो जन्म होता है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है। तो आगे बताया जाता है कि आज जैसे सोमवार है तो अक्षय तृतीया हर समय सोमवार को नहीं आता है, तो आज के दिन जब भी सोमवार के दिन अक्षय तृतीया आता है तो आज के दिन रोहिणी नक्षत्र, आप लोग जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र जो है उसका प्रकाश उसका ये होता है उसका तेज होता है, तो आज के दिन अगर अक्षय तृतीया सोमवार के दिन होता है तो उसका लाभ जो है और 1000 गुना बढ़ जाता है। और आज के दिन बहुत सारे मंदिरों में भगवान को क्या करते हैं नौका विहार नौका में ले जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में भी उल्लेख आता है कि जगन्नाथ जी की जो ये है उत्सव मूर्ति है मदन मोहन राम कृष्ण लक्ष्मी जी और विश्वधात्री, तो इनको जो है और शिव जी है वहां क्षेत्रपाल 5 शिव जी है उनको सबको जो है नौका में जो है ले जाते फिर वहां नौका विहार होता है। तो इस प्रकार जो है कुछ आप लोगों को हमने संक्षिप्त पॉइंट्स बताए कि आज के दिन इतने सारे ये है उत्सव है। तो आज के दिन वृंदावन में भी काफी मंदिरों में चंदन दर्शन का जो है शाम को आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो खास करके आज के दिन माधवेंद्रपुरी जो है उनका गुणगान किया जाता है। तो हमारे जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य है मध्वाचार्य के बाद में, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रथम आचार्य है माधवेंद्रपुरी। अन्य संप्रदाय में हम देखते हैं कि राधा कृष्ण का अगर पूजा करना है तो उसमें हमारी योग्यता होनी चाहिए, तो अन्य संप्रदाय में काफी लोग गोपाल जी का या लक्ष्मी नारायण उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे संप्रदाय में हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो है उनके द्वारा हम लोगों को एक अवसर मिला है यानी राधा कृष्ण का जो है उनका सेवा करने का। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो एक परमहंस सन्यासी थे। तो माधवेंद्रपुरी जो हम देखते हैं भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते 10वें अध्याय में तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धिम योगम ये न माम उपयान्ति थे। तो जो व्यक्ति निरंतर भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, और ऐसे भक्तों के द्वारा ही भगवान क्या करते हैं कार्य कर लेते हैं। तो बताया जाता है कि माधवेंद्रपुरी जो है वो एक ऐसे परमहंस सन्यासी थे कि कहीं जाके भीख नहीं मांगते थे, अगर भगवान की कृपा से कुछ मिल गया, गीता में भी भगवान बताते अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तो जो भी भगवान के अनन्य भक्ति में लगे हैं तो भगवान को उनकी फिक्र रहती है, तो भगवान क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति को जाके चलो खुद उनको जो भी चाहिए आवश्यक चीज उनको प्रदान करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो माधवेंद्रपुरी जो है उनका एक उल्लेख करते हैं, यानी अंतिम इसमें लीला में, तो चौथे अध्याय में उल्लेख आता है कि माधवेंद्रपुरी जो है वो जो है वृंदावन आए थे, और आज के दिन जो चंदन यात्रा जो है जगन्नाथपुरी में, इसका लाखों में लोग जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जो है चंदन यात्रा का, दो प्रकार की चंदन यात्रा होती है, तो एक चंदन यात्रा उसको कहते हैं अंतर चंदन यात्रा, चंदन यात्रा जो है एक बहिर चंदन यात्रा, एक अंतर। तो बहिर चंदन यात्रा जो है तो ये लोगों के लिए होता है, जो लोग आते हैं उनके लिए होता है, और बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। और जो अंतर जो चंदन यात्रा होती है तो उसमें भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के जो है जो सेवा अर्पण किए जाते हैं, तो इसको अंतर चंदन यात्रा कहा जाता है। तो जैसे आप लोगों को माधवेंद्रपुरी के बारे में बता रहे थे, तो माधवेंद्रपुरी जो है ऐसे वो भ्रमण करते करते वो वृंदावन आए, और उन्होंने 12 वन का जो है परिक्रमा किया, उसके पश्चात वो वृंदावन आए। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ईश्वरपुरी जो है उन्होंने ये कथा, माधवेंद्रपुरी की कथा जो है वो चैतन्य महाप्रभु को बताई थी। तो अभी एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है वो वहां बंगाल से वहां जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में बहुत सारे नदियां आती हैं, गांव आते हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु रेमुणा पहुंचे तो वहां क्या हो गया कि जो गोपीनाथ जो वहां विग्रह था, जब उन्होंने उनका दर्शन किया तो आपने देखा होगा कि आज भगवान के बालों में भी फूलों से सजाया हुआ है, तो क्या हो गया कि गोपीनाथ का जो फूल का जो मुकुट था वो गिर गया नीचे, और वो चैतन्य महाप्रभु के गले में ही गिर गया। तो जो पुजारी वगैरह देख रहे थे वो उन्होंने देखा, अरे ये व्यक्ति तो ऐसे तो कभी होता नहीं, आश्चर्य की घटना। तो क्या हो गया कि जो भगवान का मुकुट है वो चैतन्य महाप्रभु के सर में गिर गया, तो उससे पुजारी लोगों ने देखा कि उन्होंने देख लिया चैतन्य महाप्रभु को, वो देख के बड़े प्रसन्न हो गए। तो बताया था कि चैतन्य महाप्रभु वहां रुके उस दिन, और बताया था कि पुजारी ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु को प्रतिदिन वहां जो है एक जो है गोपीनाथ को एक प्रकार का एक व्यंजन जिसको कहा जाता है अमृत केली। तो इसमें चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वो एक ऐसी खीर बनती है कि इस ब्रह्मांड में वो ऐसी खीर कहीं नहीं बनती। अगर आप लोग कभी जाएंगे, आप लोग वहां आजकल वो मिलता है, आप लोग जा सकते हैं वहां, उसका जो है स्वाद ले सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनको उन्होंने 12 घड़े दिए थे, लेकिन उन्होंने 5 ही लिए अपने साथियों को, बाकी पुजारी को उन्होंने वापस कर दिया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जो है उनके साथ जो उनके जो 4 पार्षद थे, तो उनको ये लीला बता रहे कि किस प्रकार जो है माधवेंद्रपुरी वो वृंदावन आए थे। तो बताया था कि माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन आए तो उन्होंने वृंदावन के 12 वनों का उन्होंने भ्रमण किया, तो उसके पश्चात वो गोवर्धन आए, और उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, और गोवर्धन में एक जगह है जहां आप देखते हैं कि जहां इंद्र ने कृष्ण भगवान की पूजा की थी। किसको मालूम है कौन सा कुंड है कुंड का? हाँ, गोविंद कुंड। तो ये गोविंद नाम जो है ये इंद्र ने भगवान को दिया था। गोविंद का मतलब है जो गाय के जो ये है मालिक। तो गोविंद कुंड के पास वहां माधवेंद्रपुरी बैठे थे, और शाम का समय हो रहा था, तो एक जो है ग्वाला आया, छोटा बच्चा 7 साल का, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे पात्र में माधवेंद्रपुरी को दूध दे दिया, और माधवेंद्रपुरी को कहा, अरे उन्होंने कहा कि देखो आप यहां आए हैं, आप ये दूध पी लो। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा, अरे आपको कैसे मालूम है कि मैं भूखा हूं? तो उन्होंने कहा कि यहां गांव की कुछ स्त्रियां आई थी, तो उन्होंने कहा कि गांव में कोई बाबा जी आए हैं, तो हमारे गांव में कोई भूखे नहीं रहते। आप देखेंगे कि ब्रजवासी लोग कहते हैं, अरे हम लोग तो खाने वाले लोग हैं। आप ब्रजवासियों को कभी पूछो, आप लोग उपवास करते एकादशी करते, थोड़े लोग कहते हैं हम कहते, लेकिन बाकी लोग कहते नहीं हम तो खाते रहते हैं, हमारे लिए कोई एकादशी का कोई लागू नहीं होता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो हमारे गांव में कोई उपवास नहीं करता है, अभी आप आए तो आपको भी ये दूध पीना पड़ेगा। थोड़े जो सन्यासी वगैरह होते वो लोग दूध पी लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं क्या करता हूं, कोई भी हमारे गांव में आता है तो मैं उनको कोई ला के नहीं देता है, तो मैं ला के देता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप ये दूध पी लो। बाद में आके मैं बर्तन लेके चला जाऊंगा। तो माधवपुरी ने जैसे गोपाल जी को देखा, वो तो समझ नहीं पाए कि ये स्वयं कृष्ण भगवान है। तो फिर माधवपुरी ने उस दूध को पी लिया तो उनको लगा कि अरे सचमुच मैं कुछ अमृत पी रहा हूं। और जैसे उन्होंने दूध पी के वो बर्तन धो के रख दिया, संध्या का समय हो रहा था, फिर रात हो गई। तो ऐसे वो माधवपुरी कभी सोते नहीं थे, तो रात भर वो जाप कर रहे थे। और जैसे सुबह हो गई तो उनको एक झपकी आ गई, तो उनके एक हल्की नींद आ गई। तो वही जो लड़का जो था जिसने दूध दिया था ग्वाला, वो आके उन्होंने माधवपुरी से कहा कि देखो मुझे जो है, मैं गोपाल हूं, मुझे मेरे वज्रनाभ ने स्थापित किया था। तो क्या हो गया कि कुछ समय पहले यहां मुसलमान लोग आके उन्होंने आक्रमण किया, तो मेरे जो पुजारी थे डर के उन्होंने क्या किया, मुझे झाड़ी में गाड़ दिया और भाग गए। बाद में फिर आके मुझे निकाला नहीं, तो काफी समय से मैं यहां जमीन में गड़ा हूं। और इतने साल से मुझे धूप गर्मी सर्दी उससे बहुत सारे ऐसे वेदनाएं हो रहे, तो आप क्या करो मुझे यहां से निकाल दो और मुझे फिर से प्रकट कर दो। और बहुत दिनों से मैं नहाया नहीं और मुझे बहुत दिनों से भूख लगी है, बहुत भूखा हूं मैं, तो आप क्या करो मेरे लिए ये सब व्यवस्था कर दो। तो जैसे माधवपुरी उनका उन्होंने ये सपना देखा तो उनकी उनको जाग आ गई। तो उन्होंने कहा अरे मैं कितना अभागी हूं, मेरे सामने कृष्ण आए थे लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। तो उनके अंदर अष्ट विकार आ गए और वो रोने लग गए, जमीन पर गिर गए। फिर उनको मन में विचार आया, हाँ अभी ठाकुर जी ने जो हमें सेवा दिया उसको करना चाहिए। तो तुरंत गांव में गए, सुबह हो गई। तो गांव में गए, गांव वालों को कहा अरे देखो यहां के जो मालिक है गोपाल जी है, वो यहां जमीन में गड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं जहां के झाड़ियों को तोड़ के गोपाल जी को निकालते हैं, फिर उनको हम क्या करेंगे गिरिराज जी के ऊपर उनको वहां स्थापित करेंगे। तो गांव वाले आए, उनको भी वो लोग भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने आके झाड़ी काट दी और जहां उन्होंने जगह बताया माधवपुरी ने, तो वहां जब भी उन्होंने खुदाई की तो सचमुच उनको गोपाल जी का विग्रह मिला। और जैसे उन्होंने उस विग्रह को निकाला तो काफी वजनदार था विग्रह। तो गांव के पहलवान उनको बुलाया गया, तो उन्होंने क्या किया गोपाल जी को गिरिराज जी के ऊपर लेके गए और वहां उनको जो है खड़ा कर दिया गया। और उसके पश्चात जैसे गांव के लोगों को पता चला कि गोपाल जी प्रकट हो गए, तो भी आप देखते कि भारत में कोई भी घटना घटती है तो काफी लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो कुछ भी हो, कोई दो व्यक्ति का झगड़ा भी चल रहा है तो लोग गाड़ी खड़ा करके देखेंगे अभी क्या होने वाला है। तो लेकिन यहां हालांकि भगवान का प्राकट्य हुआ था तो गांव के लोग तुरंत आ गए वहां, और बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी आए। तो वहां काफी ब्राह्मण लोग आए और काफी लोग यमुना जी का पानी ले आए। फिर इस प्रकार माधवपुर ने क्या किया, काफी ब्राह्मणों को कहा कि आप अभी ठाकुर जी के लिए बहुत सारे भोग बनाओ, व्यंजन बनाओ। और उस वक्त बताया था कि गोपाल जी को लगभग 100 घड़े के पानी से स्नान कराया गया। और उस वक्त जो है माधवपुर ने जब उनको स्नान वगैरह करवाया, और उसके पश्चात दोपहर के समय क्या हो गया कि बहुत सारे ठाकुर जी के लिए ब्रजवासियों ने बहुत सारे व्यंजन बनाए। और लोगों को ऐसे लगा कि अरे जो पहले अन्नकूट हो रहा था कृष्ण भगवान के समय, अभी वो अन्नकूट फिर से हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे व्यंजन बना के वहां लेके आए। तो उस वक्त बताया था कि माधवपुर ने क्या किया, भगवान को भोग लगा दिया, तो जितने भी व्यंजन बनाए थे। और अब आप लोग जैसे जानते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी भी दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है, प्रेमांजन श्रुते भक्त विलोचने। तो माधवेंद्रपुरी देख रहे थे कि किस प्रकार गोपाल जी वो खा रहे। तो अभी आप लोग देखते हैं कि भगवान अपने दिव्य दृष्टि से खा लेते हैं, अगर भगवान सब कुछ खा लेंगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं है कि नहीं। तो शास्त्र में उल्लेख आता है अंगानी यस्य सकले इंद्रिय वृत्ति मंती। जब ये गिरिराज जी की लीला कर रहे थे भगवान, तो जब ब्रजवासियों ने सब प्रसाद वहां गिरिराज जी को खिलाया था रखा था, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे गिरिराज जी के रूप में और उन्होंने आनी ओर करके सब अंदर कर लिया। तो जितने भी ग्वाल बाल थे कह रहे थे अरे कन्हैया हम क्या खाएंगे, हम थोड़े भूखे रहने वाले, हम तो उपवास नहीं कर सकते। तो जब भी गिरिराज जी ने सब कुछ अंदर लेके मुंह बंद कर दिया था तो सब ग्वाल बाल कर रहे थे हमें तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो कृष्ण ने कहा चलो ठीक है अपना आंख बंद करो। तो जैसे जितने भी ग्वाल बाल थे तो उन्होंने सबने आंख बंद कर दिया। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जितना भी अंदर लिया था वो फिर से प्रकट कर दिया। अगर हम ऐसे प्रयास करेंगे तो दूसरा ही कुछ निकल आएगा। तो जैसे अंदर लिया था गिरिराज ने, जैसे भगवद गीता एज इट इज हम कहते हैं कि नहीं, जैसे था वैसे ही वो सब बाहर आ गया। तो कृष्ण भगवान ने सब ग्वाल बाल को कहा चलो अभी आंख खोलो। तो जैसे उन्होंने आंख खोला तो उन्होंने देखा अरे सब कुछ जैसे था वैसे ही है। तो उन्होंने कहा अरे आपका गिरिराज बहुत अच्छा है, खा भी लेता है और जैसे वैसे ही दे देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ बताया था कि माधवेंद्रपुरी वो देख रहे थे कि गोपाल जी सचमुच खा रहे। और एक लीला आती है चैतन्य चरितामृत में, तो एक साक्षी गोपाल थे, आप लोग जानते हैं कि एक ब्राह्मण उनको वहां लेके गए विद्यानगर। तो कुछ समय के पश्चात बताया था कि साक्षी गोपाल को वहां के राजा जो है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर लाके उनको उन्होंने रख दिया जगन्नाथ जी के साथ। लेकिन ये साक्षी गोपाल क्या करते थे, जैसे भोग आता था पहले ही खा लेते थे जगन्नाथ जी के खाने से पहले। तो जगन्नाथ जी ने पंडाओं को कहा इसको बाहर बाहर कर दो, ये मेरे लिए जो आता है ये खा लेता है, मुझे खाने को नहीं मिलता है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता है। तो जगन्नाथ जी ने कहा इनको कहीं मेरे जो बाउंड्री से बाहर कर दो। अगर आज के दिन अगर आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथपुरी के बाहर 12 किलोमीटर के ऊपर साक्षी गोपाल वहां अभी भी है, तो वहां भी उनको भोग लगता है। तो यहां हम देखते हैं कि गोपाल जी खा रहे थे अपने दिव्य अंगों से। तो माधवपुर ने क्या किया कि जैसे गोपाल जी ने भरपेट खा लिया तो फिर माधवपुर ने भगवान के लिए तांबूल दे दिया, पान दे दिया। फिर माधवपुर ने गोपाल जी के लिए एक बहुत बढ़िया एक पलंग बनाया था और उसमें गोपाल जी को दोपहर को उन्होंने सुला दिया। फिर संध्या के समय उल्लेख आता है कि गोपाल जी को उन्होंने जगाया, फिर बहुत सारे व्यंजन और पानी उनके लिए रख दिया। तो इस प्रकार जो है बताया था कि वहां जितने भी लोग आए थे तो माधवपुरी ने क्या किया उस दिन सब लोगों के लिए अन्नकूट किया। तो जितने भी ब्राह्मण आए थे और वहां ब्रजवासी आए थे और अन्य जो भी पशु थे सबके लिए भरपेट उस दिन प्रसाद मिला। तो जब ये अन्य गांव के लोगों को पता चला कि गिरिराज जी यानी गोपाल जी प्रकट हो गए, तो वृंदावन में आप देखेंगे कि जब भी बड़े बड़े मेले होते हैं तो काफी लोग अलग अलग गांव से आते हैं। यहां एक वन है बेल वन, जब ये लक्ष्मी जी का है वहां ये होता है, ये खास करके दिसंबर में वहां एक यात्रा होता है, लाखों में लोग आते। तो यहां जब ये लोगों को पता चला ब्रजवासियों को गोपाल जी प्रकट हो गए, तो एक एक गांव के लोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने दिन चुन लिए कि हम फलाने दिन गोपाल जी को भंडारा करेंगे। तो वृंदावन में हम देखते हैं कि बहुत सारे सेठ लोगों का भंडारा होता है। तो यहां बहुत सारे साधु लोग होते हैं, उनके पास भी एक कैलेंडर होता है सेठ लोगों का यानी भंडारे का, उनको पता चलता है कि आज किसका किस सेठ का तिथि है, तो उस आश्रम में चले जाते। तो यहां जो है ब्रजवासियों ने क्या किया कि लगभग 2 साल के लिए प्रतिदिन गोपाल जी के लिए भंडारा होता था डेली। तो अलग अलग गांव से लोग आते थे, जहां भी पता चलता है कि भंडारा हो रहा है तो 10-15 मिनट पहले लोग प्रकट हो जाते हैं, कहां से प्रकट होते हैं पता नहीं प्रसाद के लिए। तो इस प्रकार जो है वहां काफी लोग आया करते थे। 2 साल तक जो है बताया जाता है कि जब भी लोग भारत में अभी भी लोग जो है जब भी धार्मिक कार्य करते हैं तो दिल खोल के दे देते हैं। तो बताया जाता है कि जितने भी ब्रजवासी थे तो हर एक परिवार से लोगों ने एक एक गोपाल जी को गाय दे दी। गोपाल जी को अगर आज के दिन गोपाल जी नाथ द्वारा में है, अगर आप नाथ द्वारा जाएंगे वहां गोपाल जी का हो सकता है, जब भी गोपाल जी गए अपने गाय को लेके गए, वहां बहुत बड़ी गौशाला है। अभी भी वहां जो है गोपाल जी के लिए जो भी भोग बनता है शुद्ध घी में बनता है। तो एक जमाने में बताते कि वहां जो है घी के कुएं थे, कुएं जानते हैं हाँ, उसमें आप घड़ा डाल के घी निकाल लो। तो बताया जाता है कि हर एक परिवार से लोगों ने क्या किया कि गोपाल जी को एक एक गाय दान में दे दिया। आज के दिन में हम देखते हैं कि ब्रजवासियों के घर में गिरिराज जी की एक शिला तो अवश्य होगी। तो इस प्रकार गोपाल जी का जो है बहुत सारे गाय का उनका एक गौशाला बन गया। फिर काफी लोगों ने गोपाल जी के लिए अलग अलग प्रकार के बर्तन दे दिए भंडारा बनाने के लिए। तो गोपाल जी का जो है बड़ा एक किचन बन गया। फिर कोई एक सेठ था मथुरा का, तो उसने गोपाल जी के लिए एक बहुत बढ़िया जो है मंदिर बना दिया। फिर काफी अन्य लोगों ने वस्त्र, फिर गोपाल जी के लिए अलग अलग प्रकार के जो है रत्न मणि तो उनके लिए बहुत सारे आभूषण पोशाक दे दिए। तो ऐसी सेवा चल रही थी तो माधवपुर ने क्या किया कि कुछ बंगाल से दो ब्राह्मण आए तो उनको उन्होंने क्या किया, कहा कि आप गोपाल जी की नित्य सेवा करो। तो दो साल के पश्चात गोपाल जी ने फिर वही जो है गोपाल जी माधवपुर के सपने में आए तो उन्होंने कहा कि देखो माधवपुर जी, मैं डेली इतना खा रहा हूं लेकिन मेरी जो है गर्मी अभी खत्म नहीं हुई, आप मुझे डेली स्नान वगैरह कराते हैं तो आप क्या करो, अगर मुझे चंदन लगाओगे तो चंदन जो है बहुत ही ठंडा करता है शरीर को, तो आप मेरे लिए क्या करो मलय यानी उस समय जो जगन्नाथपुरी का नाम था मलय, एक गांव का नाम है, तो मलय चंदन कहा जाता है, आज के दिन जो है मलेशिया को कहा जाता है, तो लेकिन आजकल वहां चंदन के पेड़ नहीं लगाते, रबर के पेड़ लगाते हैं। आज आपकी जो गाड़ी चलती है उसका जो टायर चलता है, टायर होता है, उसके लिए रबर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो माधवपुरी जी, आप क्या करो मेरे लिए, क्या करो ये चंदन ले आओ, तो आप मेरे चंदन का लेप लगाओगे तो इससे मुझे काफी ठंडक पहुंचेगी। तो माधवपुरी ने तुरंत जो है निर्णय लिया कि अभी मुझे यहां जाना पड़ेगा गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए। तो उन्होंने उन ब्राह्मणों को कहा कि आप ये सेवा जारी रखो गोपाल जी का, तो मैं जाके जगन्नाथपुरी से जो है चंदन ले आऊंगा। तो ऐसे बताया था कि माधवपुरी जो है वहां से जो है नवद्वीप आए और उस समय अद्वैत आचार्य जो है वो उनके शिष्य बने। उसके पश्चात माधवपुरी जो है वहां से एक गांव है रेमुना, उस गांव से होके जो है माधवपुरी जो है वो वहां जाने वाले थे जगन्नाथपुरी चंदन लेने के लिए। तो इस प्रकार वो भ्रमण करते करते जब वो रेमुना गांव में आए, अभी भी रेमुना गांव है उड़ीसा में, बालेश्वर करके एक डिस्ट्रिक्ट आता है, तो वहां जब आए वहां माधवपुरी पहुंच गए तो संध्या का समय हो रहा था, संध्या आरती हो रही थी, तो उन्होंने अच्छा दर्शन कर लिया गोपाल वहां गोपीनाथ का, और उन्होंने देखा कि पुजारी कुछ ठाकुर जी के लिए प्रसाद भोग लगाने जा रहे। तो जैसे उस पुजारी ने भोग लगा दिया, पर्दा बंद हो गया, तो माधवपुरी उनको एक महक आ गई। आप देखेंगे कोई भी व्यंजन, बढ़िया व्यंजन आप बनाते हैं वो उसकी एक अच्छी खुशबू आती है। तो जब ही माधवपुरी ने वो खुशबू उन्होंने सूंघ ली तो उनको वो एक मन में विचार आया, अगर मेरे बिना पूछे अगर मुझे इसका थोड़ा भी हिस्सा मिल जाएगा चखने के लिए सैंपल, जब आप लोग कहीं दुकान में जाते कहते हैं अरे थोड़ा सैंपल दे दो तो आपको मन करता है चलो अगर बढ़िया है तो खरीद लेते हैं। तो माधवपुरी के मन में ऐसे विचार आया, अगर मुझे कुछ थोड़ा भी सैंपल मिलेगा तो मैं अपने गोपाल जी के लिए ऐसे खीर बनाऊंगा। तो ये हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, पहले खाने अपने खाने का कभी विचार नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जब उस वक्त भोग लग रहा था लेकिन वो एक अपने मन में घृणा करने लगे, अरे अभी तो भगवान खा रहे, अभी तो भोग भार आया नहीं, तो ऐसे मुझे सोचना नहीं चाहिए था, तो अपने ऊपर धिक्कार करने लग गए। तो फिर वहां से मंदिर से मंडी में चले गए, वहां जाके बैठे तो वहां अपना भजन करने लग गए। रात का समय था तो यहां जो पुजारी था उसने क्या किया कि वो जितने भी भगवान को उन्होंने मटके में ये रखे थे खीर, वो मटके निकाल दिए, लेकिन गोपाल जी जो है वहां गोपीनाथ उन्होंने क्या किया, एक मटका चुरा के पीछे रख दिया। तो वो पुजारी ने, उसको तो मालूम नहीं कहां छुपा के रखा है, तो ऐसे होता है, तो भक्त लोग कहते हैं चुराने का कोई पाप नहीं लगता है, तो भगवान ने पहले चुराया था। तो इस प्रकार क्या हो गया कि वो पुजारी जाके सो गया तो भगवान ने उसको जगाया, बोला चलो उठो, देखो मेरे एक अनन्य भक्त है जिनका नाम है माधवपुरी, तो उसके लिए मैंने एक जो है खीर, एक मटका चुराया है, तो वो क्या है, मैंने क्या किया कि मेरे पैर के पीछे, पर्दे के पीछे छुपा के रखा है, तो अभी क्या करो मंदिर में आके उस मटके को लेके जाके माधवपुरी वो बाजार में बैठा है उसको दे दो। तो अभी पुजारी जैसे उसको सपना आ गया, वो उसकी नींद खुल गई, तो तुरंत आया स्नान करके, और जैसे उसने जाके देखा है कि सचमुच घड़ा है, तो उसने सोचा ये व्यक्ति तो काफी भाग्यशाली है जिसके लिए भगवान भी जो है वो चोर बन गए। तो ऐसे पहले उनका नाम था गोपीनाथ, फिर अभी उनको कहते हैं खीर चोर गोपीनाथ। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, वहां सफाई किया, बाहर आए, फिर वो जैसे वहां मंडी में गए वहां चिल्लाने लगे, अरे माधवपुरी आप बड़े भाग्यशाली है, आपके लिए गोपीनाथ ने जो है खीर चुराया। तो ऐसे वो चिल्ला रहे थे, अरे माधवेन्द्रपुरी कौन है भाग्यशाली, ये आपका है ले जाओ। तो उस वक्त जो है सुबह का टाइम था, कोई नहीं था, माधवेन्द्रपुरी वहां बैठे थे। फिर उन्होंने आके उस घड़े को स्वीकार कर लिया और वो पुजारी जो है उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत कर दिया और उन्होंने कहा अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, यानी जो है गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चुराया। तो अभी जैसे उन्होंने वो खीर खा ली तो मिट्टी का घड़ा था, तो माधवेन्द्रपुरी ने क्या किया, उस घड़े को मैंने तोड़ के वो अपने एक कपड़े में बांध के रख लिया। तो उस दिन से वो प्रतिदिन क्या करते थे कि वो एक मिट्टी का टुकड़ा खा लेते थे। तो ऐसे बताया था कि माधवेन्द्रपुरी जैसे वो मिट्टी का टुकड़ा खा लेते थे उनके अंदर अष्ट विकार आ जाता था प्रेम का। तो कुछ समय पश्चात माधवेन्द्रपुरी सोचने लग गए अगर मैं यहां रहूंगा या अभी ये पुजारी जाके आज के न्यूज़पेपर में दे देगा और सब लोग आएंगे अरे आशीर्वाद स्वामी जी आशीर्वाद दो हमें भी, भगवान आप तो भगवान के खास भक्त हैं। तो उस समय तो पेपर नहीं था लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये जो है हवा फैल जाती है, कोई भी कार्य हो जाता है ऐसे कार्य अद्भुत। तो माधवेन्द्रपुरी ने सोचा चलो अच्छा है कि हम यहां से निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। तो वहां से माधवेन्द्रपुरी जो है तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्रतिष्ठा वो उसको स्वीकार नहीं करते। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो बताते जो प्रतिष्ठा है वो एक भजन में कहते हैं दुष्ट मन एक भजन है, उन्होंने एक मन के लिए भजन लिखा है। तो हमारा मन है ये प्रतिष्ठा चाहता है, जो कहते वो कहते कि जो प्रतिष्ठा है वो शुक्र रविष्ठा। हाँ ये जो सुअर होता है आप लोग जानते हैं सुअर क्या होता है, तो सुअर जो है जो हम लोग जो इंसान खाता है उसको खा लेता है और उसकी जो विष्ठा है वो डबल रिफाइंड होता है। डबल रिफाइंड जानते हैं आप लोग, आजकल बहुत सारे तेल खरीदते हैं ये भी एक प्रकार का वो गंदगी है, उसके अंदर सच्चा तेल का सत्व होता नहीं। तो जो सुअर का जो विष्ठा होता है वो तो और ही बेकार होता है। तो इस प्रकार वो बताते कि जो भक्त लोग होते हैं वो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वो कामना नहीं करते। तो एक प्रकार का ये जो है ये सटल एक प्रकार का सूक्ष्म काम वासना है। तो बताया था कि एक व्यक्ति के मन से उसके शरीर से काम वासना जा सकती है लेकिन उसके अंदर ये जो सूक्ष्म जो काम वासना है पूजा लाभ प्रतिष्ठा वो कभी नहीं जाती। और जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी ये ऐसे प्रतिष्ठा का वो कामना नहीं करते। और माधवेन्द्रपुरी जो है वो तुरंत वहां से निकल गए, उनको मालूम था कि जो है लोग अभी मेरे पीछे लगेंगे। तो फिर माधवेन्द्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंच गए और तब तक वहां न्यूज पहुंच गया था, तो वहां के पंडों ने उनका स्वीकार उनको स्वागत किया, फिर उनको काफी जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाया। उन्होंने कहा अरे आप तो बड़े भक्त हैं, आपको जो है गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराया। तो अभी उन्होंने कहा कि देखो मेरा एक कार्य है और हमारे जो वृंदावन के गोपाल जी है हाँ उनको चंदन चाहिए। जब भी पंडों ने सुना गोपाल जी के लिए चंदन चाहिए वो भी और बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने 80 मण जो है चंदन को इकट्ठा कर लिया और दो उनको सरवण दे दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी तरफ से गोपाल जी के लिए ये चंदन। तो माधवेन्द्रपुरी तुरंत वहां से निकले, फिर वहीं से उनको होके जाना था उसी गांव से। तो फिर कुछ दिनों के पश्चात माधवेन्द्रपुरी जब वहां आए तो वहां के पुजारी पहचान गए, अरे वाह हाँ यही जो थे जिनके लिए जो है गोपीनाथ जी ने खीर चुराया था। तो फिर उन्होंने बिना पूछे माधवेन्द्रपुरी को लाके जो है खीर दे दिया, कहने लगे अरे आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो उस रात जो है माधवेन्द्रपुरी वहां रेमुना में फिर रहे एक रात के लिए, अगले दिन निकलने वाले थे। तो यहां गोपाल जी आए उनके सपने में, वृंदावन के गोपाल जी, वो कहने लगे अरे देखो माधवेन्द्रपुरी जी आपको वृंदावन पहुंचना है तो अभी वहां कुछ एयरपोर्ट नहीं है, आपको आने में समय लगेगा, अभी मुसलमान लोग राज कर रहे आपको वो लोग बहुत परेशान करेंगे, आपको यहां तक चंदन लाना इतना आसान नहीं है, आप क्या करो वहां गोपीनाथ को चंदन लगा दो तो उसकी ठंडक मुझे यहां पहुंच जाएगी। जैसे आजकल आज लोगों का ई कैश ट्रांसफर होता है ना, यहां से डाल दो वहां पहुंच जाएगा जितना भी वो तो कागज ही है ठीक है। तो भगवान ने कहा कि गोपाल जी फिर उनके सपने में आए, आप लोग देखते हैं कि माधवेन्द्रपुरी कितने भाग्यशाली है। तो गोपाल जी उनके सपने में तीन बार आए, तो उन्होंने कहा कि देखो आप क्या करो वहां गोपीनाथ को चंदन लगा दो और उसकी ठंडक मुझे यहां पहुंच जाएगी, आप जो है ज्यादा चिंता मत करो। तो इस प्रकार माधवपुरी ने क्या किया कि दो ब्राह्मणों का वहां कार्य में लगा दिया और वो चंदन जो है वहां गोपीनाथ को लगा दिया। तो हमें मालूम होना चाहिए गोपीनाथ और गोपाल जी में कुछ फर्क नहीं है, तो भगवान के अलग अलग रूप है। तो इस प्रकार बताया था कि जैसे वहां चंदन यात्रा खत्म हो गया तो उसके पश्चात माधवपुरी जो है वो वहां चले गए, फिर से जगन्नाथपुरी चले गए। तो आप देखते कि अभी वैशाख के बाद में वर्षा का मौसम आरंभ होगा और पुराने जमाने में क्या होता था कि जितने भी साधु संत होते थे वो ये चार महीने में वो कहीं भ्रमण नहीं करते थे। बताया था कि वर्षा के समय क्या होता है, बारिश के कारण जितने भी रास्ते होते हैं उसमें घास आ जाती है, रास्ता वो ढक जाता है और बहुत सारे असुविधाएं होती हैं। तो कलयुग को भी जो है ये वर्षा ऋतु से एक जो है उसको कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है। तो वर्षा में हम देखते हैं कि जहां ज्यादा वर्षा होती है लोगों को बहुत सारे असुविधाएं होती है, तो कलयुग में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे असुविधाएं हैं। तो पुराने जमाने में जो संत लोग होते थे वो लोग भ्रमण नहीं करते थे। राम भगवान का भी उल्लेख आता है, जब सीता का अपहरण किया था रावण ने तो राम भगवान जो है किष्किंधा पहुंच गए थे, उडुपी आज के समय कर्नाटक में एक जगह है किष्किंधा क्षेत्र। तो उस समय राम भगवान वहां चार महीने के लिए वहां रुके। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि जितने भी भगवान के भक्त होते थे तो वो लोग जो है ये चतुर्मास में भ्रमण नहीं करते थे। आज के समय में भी क्या होता है कि दक्षिण भारत के बहुत सारे साधु संत लोग वो अलग अलग गांव में जाके निवास करते हैं चार महीने के लिए, तो वो लोग वहां कथा करते, काफी लोग आते हैं वहां उनको मिलने के लिए। तो उसके पश्चात तो फिर माधवपुरी जो है फिर आगे अपने दूसरे जगह चले गए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जो है ये लीला जो उन्होंने नित्यानंद प्रभु उनके जो साथी थे उनको बता रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते कि देखो माधवपुरी इतने भाग्यशाली है कि भगवान उनके सपने में आए तीन बार और भगवान ने उनसे जो है इस प्रकार उनसे सेवा ले ली। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी हमारे अंदर अच्छी भावना होती है तो भगवान क्या करेंगे, हमें सेवा का अवसर देंगे। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ भगवान को सेवा अर्पण करने का एक इच्छा होना चाहिए, जहां चाह वहां रहा कहते हैं। तो अगर हम अपने अंदर ऐसे मनोकामना रखेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमें सेवा का मौका देंगे। तो शास्त्र के अनुसार आज जो है भगवान ने एक मौका दिया है तो इसके लिए इसको कहा जाता है अक्षय। तो आज हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए जो अक्षय। भौतिक जगत में हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो तो खत्म होने वाला है। तो एक मुझे एक बात याद आई, कुछ साल यानी 20 साल पहले मेरे पिताजी भी घर बना रहे थे, तो मेरे अंकल आए थे, उन देख रहे थे कि घर कैसे बना रहे। वो किचन का कार्य हो रहा था, वो बता रहे थे यहाँ लकड़ी का कुछ कपाट मत बनाओ, यहाँ पत्थर का कपाट बनाओ, एक प्रकार का पत्थर आता है जिसको कड़प्पा कहते हैं, वो कह रहे थे कि इसका अगर कपाट बनाओगे इसमें क्रॉकरोच वगैरह जमेंगे नहीं, लकड़ी का बनाओगे उसमें क्रॉकरोच जम जाते हैं। और वो कह रहे थे ये शाश्वत रहेगा, शाश्वत का मतलब अक्षय। तो वो पत्थर वहां है, हमारे अंकल पता नहीं कहां गए, पिताजी पता नहीं कहां चले गए, वो तो अलग जगह चले गए इस दुनिया से। तो भौतिक जगत में हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज हम बनाते हैं वो शाश्वत नहीं रहेगा। तो काल ऐसे है, जैसे एक राजा है भर्तृहरि, वो कहते हैं कि मैं काल को प्रणाम करता हूं कि इनकी ऐसी शक्ति है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े राजा लोग थे, एम्पायर कहते हैं हम लोग, ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज लोग कहते हैं कि एक जमाने में वो कहते हैं कि हमारे राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सब जगह उनका राज था लेकिन उनके राज्य में सूर्योदय नहीं होता था। तो अभी वो सब खो गए। तो लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि भौतिक जगत में जो है जो भी कार्य करते हैं कोई शाश्वत नहीं रहता है, लेकिन आज के दिन भगवान के लिए जो भी हम सेवा अर्पण कर रहे वो शाश्वत रहेगा। तो इसी को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि आज हम जो भी कार्य कर रहे जो भी सेवा अर्पण करेंगे तो ये भगवान उसको स्वीकार करेंगे और वे शाश्वत रहेगा। बोलो श्री अक्षय तृतीया की, बोलो श्री कृष्ण बलराम की। तो हरे कृष्णा, एक सूचना है, तो आज जो है वहां प्रसादम हॉल थोड़ा बहुत गीला है, तो थोड़े भक्तों के लिए यहां भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग यहां भी प्रसाद जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। स्वरूपा की जय। हरे कृष्णा।